एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञानगोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
एकत्र ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमेरिकी विचारक की जिनके विचारों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की एक नई सोच जगाई।
हाँ, रैल्फ वाल्डो एमर्सन।
जी हाँ, रैल्फ वाल्डो एमर्सन 19वीं सदी के ये दार्शनिक, निबंधकार, कवि 1803 से 1882 तक। आज भी उन्हें समझना मुझे लगता है बहुत जरूरी है।
बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे पास उनके जीवन और काम पर काफी जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि उनके विचारों के जो सबसे अहम पहलू हैं उन पर बात करें।
जरूर। और देखिए, एमर्सन को यूं ही कॉनकॉर्ड का ऋषि नहीं कहा जाता। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो अमेरिकन परावादिता यानी अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म के आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु थे।
परावादिता, हाँ, ये शब्द सुना है, इसका मतलब क्या है आसान भाषा में?
आसान भाषा में कहें तो ये वो सोच है जो मानती है कि असली ज्ञान हमें तर्क या अनुभव से भी ज्यादा सीधे अपनी आत्मा, अपनी सहज बुद्धि, मतलब इंट्यूशन से मिलता है।
अच्छा, इंट्यूशन से।
हाँ, और एमर्सन ने इसी सहज बोध पर, व्यक्ति की अपनी अंदरूनी ताकत पर और प्रकृति के साथ सीधे जुड़ाव पर सबसे ज्यादा जोर दिया।
तो यही बात उन्हें खास बनाती है। उनकी आवाज में क्या अलग था?
अलग ये था कि एमर्सन में कोशिश की एक ऐसी अमेरिकी आवाज बनाने की जो यूरोपीय सोच की नकल न हो, बिल्कुल मौलिक।
अपनी आवाज।
हाँ, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उसकी गरिमा है। आत्मनिर्भर बनो, मतलब अपने पैरों पर खड़े हो, और जो तुम्हारा अपना अनुभव है वो पवित्र है, उसको मानो।
ये तो उस जमाने के हिसाब से काफी क्रांतिकारी विचार रहे होंगे।
बिल्कुल। जब समाज और परंपरा का बहुत दबाव था, तब ये कहना कि अपनी सुनो, ये बड़ी बात थी।
और वो दौर भी तो काफी उथल पुथल वाला था, है ना? अमेरिका एक नया देश, अपनी पहचान ढूंढ रहा था।
सही कहा, यूरोप की बौद्धिक छाया से निकलने की कोशिश थी। फिर देखिए, गृहयुद्ध की तरफ देश बढ़ रहा था, लोकतंत्र के क्या मायने हैं, इन सब पर बहस चल रही थी।
इसी माहौल में एमर्सन सोच रहे थे।
हाँ, और उन पर कई तरह के प्रभाव भी थे। जर्मन आदर्शवादी विचारक जैसे कांट, गोएथे, फिर अंग्रेजी कवि जैसे कॉलेरिज, वर्ड्सवर्थ, प्लेटो। और ये दिलचस्प है कि
क्या
कि उन पर पूर्वी दर्शन का भी गहरा असर था। उपनिषद, भगवद गीता, ये चीजें उस वक्त पश्चिम में नई नई पहुंच रही थीं।
अच्छा, भारतीय दर्शन का भी? ये तो कमाल की बात है।
जी हाँ, तो वो एक तरह से ज्ञानोदय के तर्क और स्वच्छंदतावाद की भावना के बीच एक पुल जैसा बनाते हैं।
ये जानना बड़ा रोचक है कि कैसे उन्होंने इन सब अलग अलग धागों को मिलाकर अपनी सोच बुनी। उनके अपने जीवन में क्या घटा जिसने इन विचारों को आकार दिया?
देखिए, उनका बचपन आसान नहीं था। परिवार पादरियों का था, पर पिताजी जल्दी गुजर गए। एमर्सन तब सिर्फ 8 साल के थे।
ओह, तो काफी मुश्किलें आई होंगी।
हाँ, आर्थिक तंगी थी, लेकिन उनकी एक चाची थीं मैरी मूडी एमर्सन। वो खुद काफी पढ़ी लिखी और तेज थीं। उन्होंने एमर्सन को बहुत सहारा दिया, प्रेरित किया।
फिर उन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई की और पादरी भी बने। परंपरा ने भाई।
हाँ, हार्वर्ड गए, दिव्यता स्कूल गए, पादरी बने। लेकिन यहीं कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है।
क्या हुआ?
दो बातें हुई। पहली, 1831 में उनकी पत्नी एलेन टकर की मृत्यु हो गई टीबी से। वो बहुत युवा थीं। इस घटना ने एमर्सन को अंदर तक झकझोर दिया। उनके धार्मिक विश्वास हिल है।
ओह, ये तो बहुत दुखद था।
हाँ, और फिर ठीक अगले साल 1832 में उन्होंने बोस्टन के सेकंड चर्च के पादरी पद से इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफा क्यों?
क्योंकि वो कह रहे थे कि उनकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि वो चर्च की कुछ रस्में, खासकर वो कम्युनियन यानी प्रसाद वाली रस्म, उसे निभाएं। ये एक तरह से संगठित धर्म से उनका खुला विद्रोह था।
अच्छा, मतलब उन्होंने परंपरा या संस्था से ऊपर अपनी अंतरात्मा की आवाज को रखा। यहीं से शायद उनकी आत्मनिर्भरता की सोच निकली।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यहीं से शुरुआत हुई। इसके बाद वो यूरोप भी गए।
हाँ, आपने बताया था वहां विचारकों से मिले।
हाँ, वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, थॉमस कार्लाइल, इन सब से मिले। और इस यात्रा ने उनके मन में ये बात और पक्की कर दी कि सच और ईश्वर कहीं बाहर किसी पुरानी किताब या संस्था में नहीं है,
बल्कि
वो हमारे अपने अंदर है और प्रकृति में है। हमें बस उनसे जुड़ना है।
और फिर वो अमेरिका लौटे, कॉनकॉर्ड में बस गए और वहीं से उनके विचार फैलने लगे, व्याख्यान, निबंध।
जी, कॉनकार्ड तो फिर जैसे परवावादिता आंदोलन का केंद्र ही बन गया। वो एक बहुत सफल वक्ता थे, खूब व्याख्यान दिए और उनके निबंध छपने लगे।
उन्होंने लिखना कब शुरू किया था? सुना है वो डायरी जैसा कुछ लिखते थे।
हाँ, जर्नल्स अपनी जवानी से ही शुरू कर दिया था, और ये कोई छोटी मोटी डायरी नहीं थी। 50 साल से ज्यादा लिखा, लगभग 263 नोटबुक है।
अरे बाप रे, 263!
हाँ, वो इन्हें अपना बचत बैंक कहते थे। यहीं से वो अपने निबंधों और भाषणों के लिए विचार, वाक्य सब निकालते थे। ये उनके लेखन का आधार था, कच्चा माल कह लीजिए।
कमाल है। तो उनके जीवन के ये अनुभव, ये मोड़ उनके लेखन में कैसे नजर आते हैं? कौन सी कृतियां हैं जो सबसे अहम मानी जाती हैं?
सबसे पहले नाम आता है 1836 के निबंध नेचर का,
प्रकृति।
ये समझिए कि परावर्तिता की नींव इसी निबंध ने रखी।
नेचर, इसमें क्या खास बात थी?
खास बात ये थी कि एमर्सन ने कहा, प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे, पहाड़, नदी नहीं है, वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, एक आईना है। हम प्रकृति से जुड़कर, उसे समझकर सीधे आध्यात्मिक सत्य तक पहुंच सकते हैं।
वाह, प्रकृति को आत्मा का आईना मानना, ये तो बहुत गहरी बात है।
बिल्कुल। फिर एक साल बाद 1837 में उन्होंने हार्वर्ड में एक भाषण दिया, द अमेरिकन स्कॉलर, अमेरिकी विद्वान।
हाँ, इसके बारे में सुना है। इसे अमेरिका की बौद्धिक आजादी का घोषणा पत्र कहते हैं।
सही।
उन्होंने अमेरिकी बुद्धिजीवियों को ललकारा, अरे भाई, यूरोप की नकल कब तक करोगे? अपने देश को देखो, अपने अनुभव से सोचो, अपनी मौलिक आवाज पैदा करो।
ये तो सीधी टक्कर लेने वाली बात हो गई।
हाँ, और फिर अगले ही साल 1838 में एक और धमाका किया उन्होंने, द डिविनिटी स्कूल एड्रेस, धर्मशास्त्र विद्यालय में भाषण।
इसमें क्या था?
इसमें उन्होंने सीधे सीधे संगठित ईसाई धर्म पर सवाल उठा दिए। कहा कि नैतिकता और ईश्वर से रिश्ता व्यक्तिगत होता है, सीधा। इसके लिए चर्चा पादरी की जरूरत नहीं है। बस इस पर तो हार्वर्ड वाले बहुत नाराज हो गए उनसे।
जाहिर है हुए होंगे, पर शायद उनके सबसे प्रसिद्ध विचार उनके 1841 वाले निबंध संग्रह में है, एसेज फर्स्ट सीरीज।
हाँ, निश्चित रूप से उसी में है उनका वो अमर निबंध, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता।
सेल्फ रिलायंस।
हाँ,
और उसकी वो पंक्ति, ट्रस्ट आई सेल्फ, एवरी हार्ट वाइब्रेट्स टू दैट आयरन स्ट्रिंग,
स्वयं पर विश्वास करो, हर हृदय उसी लोहे के तार से कंपन करता है।
बिल्कुल, ये उनकी पूरी सोच का सार है। अपनी अंदरूनी आवाज पर, अपने सहज ज्ञान पर भरोसा रखो। समाज क्या कहता है, लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत करो, अपनी राह खुद बनाओ।
आत्मनिर्भरता, ये शब्द आज भी कितना गूंजता है, पर कई बार लोग इसका मतलब स्वार्थ समझ लेते हैं। क्या एमर्सन का यही मतलब था कि बस अपनी सोचो?
नहीं नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। एमर्सन का मतलब ये नहीं था कि समाज से कट जाओ या सिर्फ अपने भले की सोचो।
तो फिर क्या था?
उनके लिए आत्मनिर्भरता का मतलब था अपनी मौलिकता को पहचानना, उस पर कायम रहना, भेड़ चाल का हिस्सा न बनना। और देखिए, इसी संग्रह में एक और महत्वपूर्ण निबंध है, द ओवर सोल, अधियात्मा।
अधियात्मा, ये क्या है?
ये एक बहुत सुंदर विचार है। एमर्सन मानते थे कि एक विशाल दिव्य चेतना है जो हर इंसान में, हर जीव में, पूरी प्रकृति में फैली हुई है, और हम सब उसी एक चेतना के हिस्से हैं, उसी से जुड़े हुए हैं।
अच्छा, तो आत्मनिर्भर व्यक्ति अकेला नहीं है, बल्कि वो उस बड़ी चेतना से जुड़ा हुआ है।
एकदम सही। तो आत्मनिर्भरता और ये सार्वभौमिक जुड़ाव, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, ये विरोधाभासी लगता है पर है नहीं।
बिल्कुल। और उनके बाद के निबंध, जैसे 1844 का एक्सपीरियंस, अनुभव, वो थोड़े और यथार्थवादी लगते हैं। उसमें वो जीवन की हकीकतों, निराशाओं, ज्ञान की सीमाओं की बात करते हैं। शायद उनके अपने बेटे वाल्डो की मृत्यु का भी उस पर असर था।
तो अगर हमें एमर्सन के दर्शन के कुछ मूल बिंदु निकालने हो तो क्या होंगे?
पहला, हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता है, इन्फिनिट पोटेंशियल है। दूसरा, आत्मनिर्भर बनो और भेड़ चाल से बचो, नॉन कन्फॉर्मिटी, अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करो।
ठीक है।
तीसरा, प्रकृति। प्रकृति सिर्फ बाहरी चीज नहीं, वो ईश्वर की भाषा है, उसे पढ़ो, समझो। चौथा, सहज ज्ञान यानी इंट्यूशन, तर्क से ज्यादा महत्वपूर्ण है, दिल की आवाज सुनो।
और पांचवा?
और पांचवा, वो ओवर सोल का विचार, हम सब एक ही विराट चेतना से जुड़े हैं। ये उनके मुख्य विचार हैं मोटे तौर पर।
और इन विचारों का असर कैसा रहा अमेरिकी सोच पर?
जबरदस्त असर रहा। उन्होंने अमेरिकी बौद्धिक जगत को एक नई दिशा दी, एक खास पहचान दी। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म तो अमेरिकी पहचान का एक तरह से केंद्र बन गया, हालांकि इसके अपने अच्छे बुरे पहलू हैं।
हाँ, वो तो है।
उन्होंने पूर्वी दर्शन को पश्चिम में लाने में बहुत मदद की। साहित्य, धर्म, राजनीति, यहाँ तक कि पर्यावरण की सोच पर भी उनकी गहरी छाप पड़ी।
और अगर हम उनकी तुलना दूसरे विचारकों से करें, वो कहाँ खड़े नजर आते हैं?
देखिए, उन्होंने जर्मन आदर्शवाद को लिया तो पर उसे हवा में नहीं रहने दिया, उसे अमेरिकी जमीन पर उतारा, प्रैक्टिकल बनाया। यूरोप के कई दार्शनिक पुरानी संस्थाओं के दायरे में सोचते थे, पर एमर्सन ने बौद्धिक स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा।
और पुरानी अमेरिकी सोच से, जैसे प्यूरिटन?
हाँ, प्यूरिटन परंपरा इंसान के पापी होने पर जोर देती थी। एमर्सन ने ठीक उल्टा कहा, इंसान मूल रूप से दिव्य है, अच्छा है। उनका नजरिया आशावादी था, निराशावादी नहीं।
ये काफी दिलचस्प फर्क है। तो उनकी विरासत क्या है? क्या लोग हमेशा उनके विचारों से सहमत थे?
शुरू शुरू में तो बहुत विवाद हुआ, खासकर जब उन्होंने धर्म पर सवाल उठाए, पर धीरे धीरे अमेरिका में उन्हें साहित्य और दर्शन के एक महान स्तंभ के रूप में देखा जाने लगा।
लेकिन क्या उनके विचार हमेशा अपनी असली धार के साथ समझे गए?
ये एक अच्छा सवाल है। कई बार ऐसा हुआ कि उनके क्रांतिकारी विचारों को थोड़ा नरम करके मुख्य धारा में फिट कर लिया गया, तो उनकी जो असली रेडिकल धार थी वो थोड़ी कम हो गई।
और कौन लोग या आंदोलन उनसे सीधे तौर पर प्रभावित हुए?
परावादिता आंदोलन तो खैर उन्हीं की देन था। फिर उनके दोस्त और शिष्य थे हेनरी डेविड थॉरो।
थॉरो, जिन्होंने वॉल्डन पॉन्ड पर जीवन बिताया?
हाँ, वही। थॉरो ने तो एमर्सन के विचारों को जी कर दिखाया, प्रकृति के साथ सादा जीवन। फिर कवि वॉल्ट विटमन, उनकी जो महान कविता है लीव्स ऑफ ग्रास, वो तो जैसे एमर्सन के विचारों का ही काव्य रूप है।
विटमन पर भी उनका असर था?
बहुत गहरा। विटमन ने तो कहा भी था कि एमर्सन को पढ़कर ही उन्हें अपनी राह मिली।
और ये असर सिर्फ अमेरिका तक ही रहा या बाहर भी फैला?
नहीं नहीं, बाहर भी खूब फैला। थोरो के जरिए पर्यावरण आंदोलनों पर, शिक्षा के क्षेत्र में जॉन ड्यूई जैसे लोगों पर, फिर बीच जेनरेशन के लेखकों पर, न्यू एज आध्यात्मिकता में भी उनकी छाप दिखती है।
हाँ।
आजकल जो माइंडफुलनेस की बात होती है,
बिल्कुल,
उसमें भी कहीं ना कहीं एमर्सन के विचारों की गूंज है। और सबसे हैरान करने वाली बात शायद ये है,
वो क्या,
कि महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान नेताओं ने भी एमर्सन के सविनय अवज्ञा और अंतरात्मा की आवाज पर चलने के विचारों से प्रेरणा ली थी।
सच में? गांधी जी और किंग पर भी एक अमेरिकी व्यक्तिवादी विचारक का असर भारत की आजादी और अमेरिका के नागरिक अधिकारों के आंदोलन पर? ये तो अद्भुत है।
है ना? शायद इसलिए कि उनके विचारों के मूल में व्यक्तिगत विवेक और नैतिक साहस था, और ये चीजें तो हर जगह हर जमाने में जरूरी हैं।
बिल्कुल, और शायद इसीलिए वो आज भी इतने प्रासंगिक हैं।
हाँ बिल्कुल, आज भी वही सवाल है, व्यक्ति और समाज का रिश्ता क्या हो, प्रकृति से हम कैसे जुड़ें, धर्म के बंधे बंधाए रास्तों से अलग क्या कोई आध्यात्मिक राह है। इन सब सवालों पर एमर्सन की सोच हमें दिशा दे सकती है।
और उनका वो नारा ट्रस्ट दाई सेल्फ, खुद पर यकीन रखो, ये तो आज की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री का मूल मंत्र बन गया है।
हाँ, बन तो गया है। उनके कुछ और कथन भी हैं जो बहुत मशहूर है और उनकी सोच को सामने लाते हैं।
जैसे?
एक तो वही ट्रस्ट दाई सेल्फ वाला, एक और है सेल्फ रिलायंस से ही, अ फूलिश कंसिस्टेंसी इज द हॉबगॉब्लिन ऑफ लिटिल माइंड्स।
हाँ, एक मूर्खतापूर्ण निरंतरता छोटे दिमागों का हौवा है। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि सिर्फ इसलिए किसी बात पर अड़े रहना कि आपने पहले भी यही कहा था, ये छोटे दिमाग की निशानी है। अगर आपको नई जानकारी मिलती है, नया अनुभव होता है, तो अपने विचार बदलने में कोई बुराई नहीं, बल्कि ये तो विकास की निशानी है।
वाह, ये तो बड़ी राहत की बात है। यानी गलती मान लेना या विचार बदलना कमजोरी नहीं, बिल्कुल नहीं। एमर्सन के हिसाब से तो ये ताकत है।
एक और कथन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो हमारे पीछे है और जो हमारे सामने है, वो उसकी तुलना में छोटी बातें हैं जो हमारे भीतर है।
क्या बात है?
What lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within us. ये दिखाता है कि वो इंसान की अंदरूनी क्षमता में कितना गहरा विश्वास रखते थे। बाहरी हालात आते जाते रहते हैं, असली शक्ति तो हमारे अंदर है।
जाहिर है, इतने मुखर और नए विचारों की आलोचना भी खूब हुई होगी।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस जमाने के जो पारंपरिक धार्मिक नेता थे उन्होंने तो एमर्सन पर ईसाई धर्म से भटकने का आरोप लगाया। कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा उनका दर्शन बड़ा अस्पष्ट है, हवा हवाई है, प्रैक्टिकल नहीं है।
और उनके व्यक्तिवाद पर भी सवाल उठे होंगे।
हाँ, कि क्या ये स्वार्थ को बढ़ावा देता है, क्या इससे समाज के प्रति जिम्मेदारी कम होती है। ये आलोचना तब भी थी और कुछ हद तक आज भी है।
आज भी ये बहस होती है कि क्या एमर्सन का व्यक्तिवाद अमेरिकी समाज में जरूरत से ज्यादा इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देता है, जिससे समुदाय की भावना कमजोर होती है।
सही।
और ये सवाल भी उठता है कि क्या उनका दर्शन ज्यादातर श्वेत पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय पुरुषों के अनुभव पर आधारित है। क्या उन्होंने समाज की जो व्यवस्थागत समस्याएं थी, जैसे गुलामी या गरीबी, उन पर पर्याप्त ध्यान दिया। हालांकि ये भी सच है कि बाद में वो दास प्रथा के जबरदस्त विरोधी बन गए थे। ये जरूरी सवाल है सोचने के लिए।
बिल्कुल। और एक खतरा ये भी रहता है कि लोग उनके विचारों को बहुत सरल बना देते हैं, जैसे सिर्फ पॉजिटिव सोचो टाइप, या फिर अपने स्वार्थ के लिए उनकी व्यक्तिवाद का हवाला देते हैं।
हाँ, ये तो होता है।
जबकि एमर्सन के लिए नैतिकता, आध्यात्मिक विकास और सबकी गरिमा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण था। उनके विचारों में गहराई है।
चलिए अब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से। आपने उनके जर्नल्स का जिक्र किया था, वो 263 नोटबुक्स।
हाँ, वो जर्नल्स तो अद्भुत थे और उनका विचारों को सहेजने का तरीका भी बड़ा निराला था। वो हर विचार को, हर उद्धरण को अलग अलग विषय के तहत फाइल करते थे, जैसे वो अपना निजी ज्ञानकोश बना रहे हो।
अच्छा, और वो आग लगने वाला किस्सा क्या था उनके घर में?
हाँ, 1872 की बात है, उनके घर में आग लग गई। लेकिन कमाल ये हुआ कि पूरा कस्बा मदद के लिए दौड़ पड़ा। उनके दोस्त, पड़ोसी,
कौन कौन थे
उनमें? लिटिल वुमेन की लेखिका लुइसा मे एल्कॉट भी थीं। सबने मिलकर इंसानी चेन बनाई और एमर्सन की कीमती किताबें और पांडुलिपियां आग से बचाईं।
अरे वाह।
इतना ही नहीं, लोगों ने चंदा जमा करके उनका घर दोबारा बनवाया, और जब तक घर बन रहा था तब तक एमर्सन और उनके परिवार को यूरोप घूमने भेज दिया ताकि उन्हें परेशानी न हो।
क्या बात है, ये दिखाता है कि लोगों ने कितना चाहते थे, कितना सम्मान करते थे, सिर्फ एक विचारक नहीं, एक अच्छे इंसान के तौर पर भी।
बिल्कुल। और एक और बात बताऊं?
हाँ?
एमर्सन की छवि भले ही बहुत आशावादी विचारक की है, पर वो खुद भी कभी कभी उदासी और एक तरह की भावनात्मक ठंडक महसूस करते थे। वो इसे अपना आर्कटिक स्वभाव कहते थे।
अच्छा, तो वो भी इन भावनाओं से गुजरते थे।
हाँ, ये याद दिलाता है कि महान लोग भी हमारी आपकी तरह इंसानी होते हैं, अपनी मुश्किलों और कमजोरियों के साथ।
तो आखिर में अगर हम सोचे कि एमर्सन की सबसे स्थायी देन क्या है, हमें आज उनसे क्या सीखना चाहिए?
मेरे ख्याल से उनकी सबसे बड़ी और स्थायी देन है हर एक इंसान के अंदर छिपी हुई दिव्यता और संभावना पर उनका अटूट विश्वास। ये सोच ही तो लोकतंत्र और मानवतावाद की जड़ है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच की तलाश के लिए हमें किसी बाहरी सत्ता या किताब पर पूरी तरह निर्भर होने की जरूरत नहीं। जवाब हमारे अंदर भी है और प्रकृति में भी है। हमें बस खुद पर भरोसा करना सीखना है।
और शायद हमारे सुनने वालों के लिए ये सोचने की बात है, आज की दुनिया में जहां हम सब इतने जुड़े हुए हैं पर शायद उतने ही अकेले भी, और जहां कन्फर्मिटी यानी दूसरों जैसा बनने का दबाव इतना ज्यादा है,
हाँ,
वहां एमर्सन की आत्मनिर्भरता की बात और प्रकृति से गहरे जुड़ाव की पुकार, ये कितनी मायने रखती है। क्या ये आज हमें अपनी जिंदगी जीने का कोई नया रास्ता दिखा सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।
समापन कथन, समापन कथन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।